ओम शांति। हम ब्राह्मणों के लिए ये संगम युग का समय बड़ा अनमोल है, क्योंकि पूरे कल्प में यही समय है जब हम पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। ऐसा बनने का हमारे सामने साकार बाबा एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम जानते हैं और हम सभी का ये शुभ संकल्प रहता, हम भी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बाप समान बनाए, अपनी स्थिति को बाप समान बनाए। क्योंकि बाप समान बने बिगर न हम फरिश्ता बन सकते हैं और न ही देवता बन सकते हैं। तो ऐसा बनने के लिए हमें अभी से ही अपने अंदर आत्मबल भरना होगा, अभी से ही हमें सर्वगुण और सर्व शक्तियों को धारण करना होगा, सर्व कलाओं को भी अपने अंदर धारण करना होगा। जब हम अपना वर्तमान जीवन देखते हैं या वर्तमान स्थिति को देखते हैं और बाबा की स्थिति को देखते, बाबा को देखते हैं, साकार बाबा कैसे रहे, क्या किया, कैसे फरिश्ता बने, अपनी वर्तमान पुरुषार्थ और बाबा की स्थिति को देखने से हमें ये स्पष्ट पता चल जाता है, मालूम हो जाता है कि दोनों के बीच में हमारा पुरुषार्थ और बाबा की स्थिति बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। अब लक्ष्य तो रखा है, संकल्प रखा है, बाबा जैसा बनना है, तो बाबा समान स्थिति को बनाने के लिए जो बीच में गैप है, ये अंतर है, इसे हमें भरना है। ये अंतर को कैसे हम पूरा करें? कौन सा अंतर? बाबा बन गए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और हम नहीं बने हैं, तो ये जो बीच में गैप है, अंतर है, ये दोनों की स्थिति में, हमारे पुरुषार्थ में बाबा की स्थिति में जो फर्क है, इसको पूरा करने के लिए चाहिए हमें परिवर्तन की कला। अगर परिवर्तन की कला नहीं तो 16 कला संपूर्ण भी नहीं। परिवर्तन के लिए हम अपने को देखें कि मेरे अंदर कौन कौन सी कलाएं आई है, और बाबा मम्मा को देखते हैं तो बाबा और मम्मा के हर कर्म में कला थी, उनका उठना बैठना देखना बोलना चलना सोना खाना, हर कर्म में कला थी। यदि हम भी पुरुषार्थ करें, मम्मा बाबा को फॉलो करते चलें, तो हमारे भी हर कर्म में ऐसी ही कला आ जाएगी। जब हमारे कर्म में भी कला आ जाएगी तो हमारा हर कर्म एक चुंबक के समान बन जाएगा, जैसा मम्मा बाबा का था, जैसे सभी आकर्षित हो जाते थे, कितना उपराम हो जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे, ये स्थिति उनकी हो जाती थी ना मम्मा बाबा के सम्मुख आते ही। बाबा जैसे हमारे भी हर कर्म में जब कला होगी, हमारे भी हर कर्म हर एक्टिविटी एक चुंबक की तरह हो जाएगी। अब ऐसा हम भी बाबा समान चुंबक बन जाएं, हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाए, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ एक, दिन भर सुबह से लेकर रात तक अपने ऊपर अटेंशन, सावधानी, चलते फिरते उठते बैठते सोचते देखते हर कर्म में सावधानी। सावधानी रखते हुए हम चलते रहेंगे, जो जो सावधानी बाबा ने हमको दी है, शिक्षा और सावधानी, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी दिनचर्या बनाएंगे, दिन भर के सारे कारोबार करेंगे, तो हमारा भी हर कर्म कला बन जाएगा, हम भी बाप समान बन जाएंगे। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसी कोई विधि विधान नहीं है कि हम अपना कर्तव्य करते हुए, अपने कारोबार को भी करते हुए हम मुक्ति को प्राप्त कर ले, क्योंकि मान्यता तो यही है, मुक्ति के लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा, घर बार का भी संसार का भी, जैसे सबने सुना है मुक्ति के लिए अधिकारी वही बने जो घर बार छोड़ के सन्यासी बने। यही बात राजा की बुद्धि में थी, तो उन्होंने कहा मुझे तो अपना कर्तव्य करना है, प्रजा की पालना करनी, अच्छी तरह से पालना करते हुए, ये कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मुझे मुक्ति को पाना है, क्या ऐसा कोई विधि विधान नहीं है? ये बात उन्होंने अपने मंत्री से पूछी। मंत्री ने जवाब दिया कि आपके प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से गोदावरी नदी के पार एक संत रहते हैं, वो जरूर देंगे, उनके पास आपके प्रश्न का जवाब होगा। राजा ने कहा ठीक है, चलते हैं उनके पास। दोनों चल पड़े संत से मिलने के लिए, नदी को पार किया, जंगल था, नदी के पास जंगल था, और जंगल में थोड़ा आगे जाकर उनकी कुटिया थी। दोनों ने चलना शुरू किया, मंत्री को एक बात याद आ गई, राजा को कहा महाराज संत उन्हीं से मिलते हैं, हम उनसे मिलने तो जा रहे हैं लेकिन संत उन्हीं से मिलते हैं जो उन तक पहुंचने तक इस बात का ध्यान रखते हुए सावधानी से चलते हुए जाते हैं, इस बात की सावधानी रखते हैं कि उनके पैरों के नीचे कोई भी छोटे से छोटा जीव जंतु कुचल न जाए, कि पैरों के नीचे न आ जाए, जो इस बात की सावधानी रखते हुए जाएंगे संत उनसे ही मिलते हैं। राजगार ठीक है, अच्छा तुमने बता दिया, मैं ध्यान में रखते हुए चलता हूं। तो पूरा राजा का ध्यान नीचे रहा अपने पैरों की तरफ, कि मेरे पैरों के नीचे कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ न जाए, मर न जाए। पूरा समय नीचे देखते देखते चलते रहे संत के पास पहुंच गए। संत बाहर ही बैठे थे, कुटिया के बाहर ही बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने राजा को देखा, मंत्री को देखा, मुस्कुरा के उनका स्वागत किया, आओ भाई आपका यहाँ स्वागत है। बिठाया दोनों को, बोलो भाई आप अपने आने का कारण बताइए। उन्होंने अपना कारण बताया। तब संत ने कहा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो, मैंने आपका कारण सुन लिया आने का, अब मेरे एक बात का जवाब आप दो कि आप जब मेरे यहां तक पहुंचे हो, आपने रास्ते में क्या क्या देखा, मुझे वो सब बात बताओ। राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया कि उनका तो पूरा ध्यान नीचे था, कुछ भी नहीं देखा, क्या पेड़ थे क्या पौधे थे, रास्ते में क्या क्या था, कुछ भी नहीं देखा। थोड़ा समय चुप रहे। संत का, नहीं नहीं जो भी हो बता दो, सच सच बता दो जो भी देखा हो। तब राजा ने कहा कि मेरा मुझे मंत्री जी ने सब मंत्री ने ऐसा बोल दिया था कि मुझे इस बात की सावधानी के साथ चलते हुए आपके पास आना है। मेरा पूरा ध्यान नीचे उसी बात पर था कि मेरे पैरों के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा छोटा बड़ा कोई कुचल ना जाए, मर ना जाए, मैं इस सावधानी से चलता हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं देखा, न मेरा ध्यान इधर था न उधर था, कहीं मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान उसी तरफ था बस। संत ने जवाब दिया, यही तो आपके प्रश्न का जवाब है, आपके प्रश्न का यही तो जवाब है कि अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम मुक्ति को कैसे प्राप्त करें। यदि आप अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, कर्म करते हुए इस बात की सावधानी रखेंगे कि आपके द्वारा कोई भी छोटे से छोटा भी पाप कर्म न हो जाए, यदि ये सावधानी से आप अपने जीवन में चलेंगे, निश्चित रूप से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा भी देखो हमें मुरली में इस बात पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे मुरली क्या है, बाबा की मुरली जो रोज हम सुनते हैं क्या वो भगवान की अपने बच्चों के प्रति, हम आत्माओं के प्रति शिक्षा और सावधानी। बस मुरली में शिक्षा है और सावधानियां है। यदि उसको हम ध्यान में रखते हुए जीवन में चलेंगे तो बाबा ने तो लक्ष्य हमें केवल मुक्ति का नहीं, जीवन मुक्ति का भी दिया है, मुक्ति जीवन मुक्ति को हम प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए ये संगम युग का समय बड़ा ही मूल्यवान है। हमें इस संगम युग के समय को, समय के मूल्य को समझते हुए, इसकी कीमत समझते हुए, इसका एक एक क्षण हम सफल करते रहेंगे, हर क्षण इस बात का ध्यान रखेंगे कि मुझे किसी भी प्रकार का विकर्म नहीं करना है, मेरे द्वारा किसी को भी किसी दुख की प्राप्ति न हो जाए, इस सावधानी से चलते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो बाप समान बनने के लिए पहली बात परिवर्तन की शक्ति चाहिए, परिवर्तन की कला चाहिए। जितना जितना हम अपने अंदर हमेशा परिवर्तन का ध्यान रखेंगे, हम आगे आगे ही बढ़ रहे हैं या वहीं खड़े हैं या रिवर्स में जा रहे हैं। परिवर्तन की कला ही हमें 16 कला बनाएगी। दूसरी पॉइंट, दूसरी बात, सावधानी, शिक्षा और सावधानी। जो बाबा की हमें रोज मुरलियों में शिक्षा सावधानी मिलती है, उसको सदैव हम अपने साथ रखें। उस सावधानी के साथ हम अपने दिन भर के कारोबार करें, ताकि उस सावधानी के कारण कोई भी पाप कर्म मुझसे ना हो, कोई विकर्म ना हो जाए। तीसरी बात, पाप समान बनने के लिए देह भान और देह अभिमान का त्याग, अथवा कहें इच्छा मात्रमा विद्या। तो जितना जितना हमारा देह भान और देह अभिमान का त्याग होता जाता है और निरंतर हमारी योग की स्थिति बनती जाती है, उतना ही हम बाप समान बनते जाते हैं। क्योंकि बाप समान बनने और हमारी आज की जो स्थिति में जो अंतर मैंने बताया, कई बातों का अंतर है, तो दोनों के बीच में एक दीवार और बनी हुई है। वो दीवार है हमारे देह भान और देह अभिमान की। एक बार कुएं ने सागर से बात की, कहा आप नदी को तो अपने में समा लेते हो, मुझे क्यों नहीं समाते हो? मैं भी आप में समाना चाहता हूं, कुएं ने पूछा, लेकिन कारण क्या? सागर ने क्या जवाब दिया? इच्छा तो मेरी बहुत होती है तुम्हें भी अपने में समाने की, लेकिन क्या करूं, तुमने चारों ओर अपना एक दीवार का घेरा बना के रखा हुआ है। ये जो दीवार का घेरा है, ये दीवार का जो घेरा, वो तुम्हें सागर में समाने नहीं देता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये जो देह का भान, देह का अभिमान, सूक्ष्म रूप में भी, मोटे मोटे रूप में तो त्याग कर दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी कहीं देह भान आ ही जाता है, अभिमान भी आ जाता है। बस यही जो है वो हमें प्रभु मिलन का परम सुख और परम आनंद से वंचित कर देता है। हम वो परमात्मा से वो सुख, वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते जो मिलना चाहिए। साकार बाबा को भी हमने देखा, अपनी यह स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कितनी मेहनत की, सभी को मालूम है ना, अनुभव पड़ा होगा बाबा का, कितनी मेहनत, कितनी डायरियां लिख ली। ये पाठ पक्का करने के लिए देह भान, देह संबंधों में, जरा भी मेरा देह संबंध और अपने देह में जरा भी भान ना रहे, सभी मेरे बच्चे सब आत्मा हैं, ये आत्म अभिमानी स्थिति, ये आत्मिक दृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा ने बहुत मेहनत की। और इस मेहनत से फिर सब देह भान, देह अभिमान, देह के संबंधों का त्याग कर वो फरिश्ता बन गए, फरिश्ता बन गए। तो हमारी जितनी ये आत्मिक अवस्था रहती है, दृष्टि वृत्ति में आत्मिक भाव रहता है, वो सामने वाले का, सबका दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन कर देता है। बाबा की युगल यशोदा माता अपना अनुभव में बताती है कि कभी एक संकल्प मुझे कभी ऐसा आता, एक संकल्प भी कभी मुझे ऐसा आया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरे पति में भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है वो। कभी एक छोटा संकल्प भी आया, तुरंत मुझे एहसास होता था, ओहो आज तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने प्रजापिता ब्रह्मा को अपना पति कैसे समझ लिया, वो तो सबका पिता है, तो मेरा भी पिता है। बाबा की ये जो स्थिति, जो बाबा ने इतनी मेहनत से बनाई, इतना पुरुषार्थ करके बनाई, आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति वाली, इसने भी देखो सबका परिवर्तन कर दिया। कोई भी बाबा को उस दृष्टि से नहीं देखते थे, देह के संबंध की दृष्टि से नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा, सब हम आत्माओं का परम पिता है, इनके तन में भगवान आते हैं। इसलिए देह भान और देह अभिमान का त्याग, जितना जितना हम इस स्थिति को बनाने में ध्यान देंगे, ऐसा बनाने की मेहनत करेंगे, बड़ी लगन से और दृढ़ संकल्प से इस स्थिति पर ध्यान देंगे या इस स्थिति बनाएंगे, तो निश्चित रूप से बाप समान हम बन ही जाएंगे। चौथी बात, बाप समान बनने के लिए एक बल एक भरोसा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन और बहुत मेहनत वाली बात नहीं है। आपको बस ये निश्चय और नशा रहे, ये निश्चय नशा रहे कि इतनी बड़ी दुनिया, इतनी आत्माओं में से भगवान ने मुझे चुना है सतयुग के लिए, सतयुग में ले जाने के लिए, भेजने के लिए, इतनी बड़ी दुनिया से, इतने ढेर मनुष्यों में से मुझे चुना है। अगर यह निश्चय और नशा रहा एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा में निश्चय, एक बल एक भरोसा, जो कुछ भी हो मेरे लिए बाबा ही है। फिर बाबा ने भी क्या कहा, यदि आपका ऐसा संकल्प है तो गीता में लिखा ना, सर्व धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम रज। हे अर्जुन, तू सभी को छोड़कर, सभी से बुद्धि निकालकर एक मेरी शरण में आ जाएगा, सिर्फ एक को पकड़ेगा, बस एक मेरा वायदा है, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, राजाओं का राजा बना दूंगा। बाबा ने हम आत्माओं को ये जैसे अभेदान दिया है, हमेशा बच्चे चिंता मत करो, मैं साथ में हूं, सब मेरे, मुझे दे दो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। चित्र है ना, सबने रखा होगा अपने पास में घर में, मीठे बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं, कितना आश्वस्त कर दिया हमें, कितना हमको निश्चिंत कर दिया। बस एक बल एक भरोसा, एक पे पूरा विश्वास, बस एक। हर समय विश्व रक्षक मेरी रक्षा के लिए बैठा हुआ है, मुझे बस, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। कोई भी बात सामने आए, बाबा बैठा हुआ है ना, बाबा बैठा हुआ है। ऐसे हजारों भाई बहनों के जीवन के अनुभव हैं कि जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आई, कैसे कैसे संकट आए, कैसे कैसे बड़े बड़े विघ्न आए, बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो गए, लेकिन एक संकल्प, मेरा कोई हिसाब किताब होगा, बाबा बैठा हुआ है ना, स्थिति को हिलने नहीं दिया, स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया, इसी विश्वास के साथ बाबा बैठा हुआ है ना, ये तो मेरा ही कोई अपना हिसाब, दूसरे लोग कहते हैं अपने भगवान पूजा छोड़ दी, अपने भक्ति करना छोड़ दिया, इसलिए देखो आपके सामने ऐसी स्थिति आई है, आपके सामने ये संकट आया। लेकिन नहीं, विश्वास था, ये तो मेरा अपना कोई हिसाब रहा होगा पूर्व जन्म का, पता नहीं कोई से जन्म का, लेकिन बाबा तो बैठा हुआ है ना, जब मैं बाबा का हूं, मुझे बाबा में पूरा निश्चय है, बाबा से मुझे अटूट प्यार है, सर्व संबंध मैंने बाबा से ही जोड़े हैं, बाबा बैठा हुआ है, इस विश्वास से वो रहे तो कुछ समय में सारी परिस्थिति अपने आप ठीक हो गई, पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई। बहुत ऐसे अनुभव हैं, सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे आपने। इसलिए एक बल एक भरोसा, ये स्थिति रही ब्रह्मा बाबा की, एक बल एक भरोसा। बेकरी पार्ट आया, खाने के लिए कुछ नहीं था यज्ञ में, सुबह से बच्चे सब भूखे बैठे हैं, बार बार भंडारी को संभालने वाली आ रही है, बोली दादी बाबा क्या करें, इतनी बज गई है, कुछ बनाया नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबा के बच्चे 12 बजे तक रुको, बाबा सब प्रबंध कर देगा, क्योंकि 12 बजे डाक आती थी रोज। बाबा को पता है ये शिव बाबा का ये तो परीक्षा है, बाबा हमको देख रहा है, हम बच्चों का निश्चय को देख रहा है, विश्वास को देख रहा है, इनको भगवान में विश्वास है या नहीं, ऐसे थोड़े से पेपर में हिल तो नहीं जाते हैं, क्या निश्चय डामाडोल तो नहीं हो जाता है, इनको संशय तो नहीं आ जाता है, ये देख, भगवान भी तो परीक्षा तो लेता है ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमको दे रहा है 2500 साल के लिए, बिना परीक्षा लिए बिना परखे कैसे दे देगा, परखे का तो सही ना, वो भी आप योग्य हो या नहीं हो, ये तो शिव बाबा की परीक्षा थी बच्चों की, ये टेस्ट, बाबा टेस्ट कर रहा था बच्चों की, और बच्चे भी निश्चिंत होके हमारे ब्रह्मा बाबा मम्मा जैसे हम भी वैसे ही रहेंगे। बाबा मम्मा ने भी तो कुछ नहीं खाया, हम भी निश्चिंत बाबा की याद में बड़े निश्चिंत होकर बैठे रहे, और ब्रह्मा बाबा को निश्चित था कि शिव बाबा कोई ना कोई प्रबंध करेगा बच्चों का, क्योंकि ये कार्य उसका है, ये सब उसका कार्य चल रहा है, ये सब कुछ उसी ने किया है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो गई। तो 12 बजे की डाक में ही लिफाफे में से पैसे निकल आते हैं, बच्चे भेजते हैं लिफाफे में पत्र के साथ डाल करके गुप्त रूप से, और देखो कारोबार हो जाता था, खाना बन जाता था, पर निश्चय निश्चय, एक बल एक भरोसा, वो है ना जिम्मेवार, वो है ना। बाबा भी बड़े मीठे रूप से शिव बाबा को उलहना देते थे, देखो बाबा ये सब शुरू किसने किया है काम, आपने शुरू किया सारा ये कारोबार, सत्यों की स्थापना का, इन सब बच्चों को इकट्ठा करने का, मुझे निमित्त बनाने का, अगर आप नहीं करेंगे तो बदनामी तो आपकी ही होगी, शिव बाबा की होगी ना। बाबा बड़े निश्चिंत थे, ब्रह्मा बाबा कि मैं तो निमित्त हूं, करने वाला सब वो है। तो जब हम भी अपने जीवन में इतने निश्चय बुद्धि होकर एक बल एक भरोसे से चलते हैं, तो फिर चलते चलते हमारी स्थिति बाप समान बनती चली जाती है, और वो दिन दूर नहीं यदि इस स्थिति को अखंड रखा, बीच में टूटने नहीं दिया, खंडित नहीं करने दिया, बहुत जल्दी हम भी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। और पांचवी बात, हमेशा अपने सामने लक्ष्य रख के चलो। आपको लक्ष्य को भुलाने वाली, लक्ष्य से आपकी बुद्धि को हटाने वाली बहुत सारी बातें आएंगी, आपको लक्ष्य से हटाएगी। लेकिन लक्ष्य हमेशा सामने रहे, इधर और उधर नहीं, इधर उधर बुद्धि मन ना जाए, सिर्फ लक्ष्य। मुझे ऐसी स्थिति बनानी है, बाप समान बनकर मुझे सत्यों का मालिक बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है, जैसे हमारे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके ये लक्ष्य रखा। देखो नदी चलती है, नदी बहती रहती है, रास्ते में कितनी चट्टानें आती उसको रोकने के लिए, रुकती है, उनसे टकराती हुई अपना इधर उधर से रास्ता निकाल के आगे बढ़ती जाती, रुकती नहीं है। कितने बीच में कूड़ा कचरा गंदगी डालने वाले उसको अपमानित करते हैं, डाल डाल के अपमानित करते हैं, वो सारा अपमान सहते हुए भी रुकती नहीं है, आगे ही बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते ये सब कहीं भी रुकी नहीं, बिना बदले की भावना से किसी ने कूड़ा कचरा डाला, मुझे मेला करने की कोशिश करी, मुझे गंदा बनाने की कोशिश कर, उसे बदला लूं, बिना बदले की भावना से वो आगे आगे बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते अंत में सागर में मिल जाती है, और जब सागर में मिली तो नदी भी सागर बन गई। ब्रह्मा बाबा का जीवन भी ऐसा ही था, कितने विघ्न आए, कितनी बाधाएं आई, हाँ कितने संकट, सबको मालूम है, कितना बाबा को बदनाम करने की कोशिश की, संस्था को बंद करने की कोशिश की, है भवन में आग भी लगा दिया, पिकेटिंग की, मतलब कितनी बातें सामने आई। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सबने पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, कितनी कितनी बातें सामने, पेपरों में कितनी बड़ी बड़ी ऐसी झूठी न्यूज छपी, क्या क्या बाबा के लिए नहीं बोला, कितने झूठे बातें बाबा के जीवन पर लगाई, लेकिन हमने क्या देखा, बाबा की स्थिति पे इतना भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सत्यता तो कुछ और थी ना। जहां सत्यता होती है वहां निश्चिंतता होती है। ये जो कह रहे ये बात ऐसी है ही नहीं, जो आरोप लगा रहे तो सब झूठे ही हैं, तो निश्चिंत स्थिति। बाबा की स्थिति में जरा भी रिंचक भी फर्क नहीं आता, वही निश्चय, वही नशा और वही स्वमान। बाबा हमेशा अपने स्वमान में रहते थे, स्वमान से चलते थे, कभी स्वमान को भी नहीं बोला, जो शिव बाबा जितने भी हमको स्वमान दिए। और ऐसी स्थिति बनाते बनाते, इन सब विघ्नों से पार होते होते, बिना रुके आगे बढ़ते फरिश्ता बन गए ना, फरिश्ता बन गए। बाप समान बनने का हमारा संकल्प है, सुनाने गीत में संकल्प यही है, बाबा जैसा बनना ही है। बाबा भी मुरली में यही बात हमें पक्की कराते, दादियों की क्लास में भी यही बात हमें पक्की कराई जाती है, हमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है, उनके जैसा बनना है, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, तो इन बातों से रुकना नहीं है। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि, बहुत सारी, जैसे बताया ना मैंने, कई भाइयों के बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए तो भी स्थिति हिली नहीं, बाबा बैठा हुआ है ना। हमारा भी तो कई जन्मों के हिसाब से, तब कहाँ जाएंगे, हमारे सामने नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, किसी और के सामने थोड़ी है, किया मैंने है, किसी और के सामने कैसे आएगा, वो मेरे सामने आएगा, मैंने कर्जा लिया है तो मुझे तो चुकाना पड़ेगा ना। आती बातें ऐसी आती सामने, उसको यही समझो, और हमेशा अपनी स्थिति पर पूरा ध्यान, कभी भी स्वमान से नीचे नहीं आए। स्थिति ऊंची बना के रखना, मतलब हमेशा सोमान सामने रखना। हनुमान की बात तो सबने सुनी है, जब संदेश वाहक बनकर वो गए थे रावण की सभा में, रावण ने उनको, जबकि संदेश वाहक होता तो उसको सम्मान के साथ बिठाया जाता है, नियम ऐसा ही है, परंतु रावण तो देहाभिमानी बहुत था, उसने उसका कोई सम्मान नहीं किया, उसको बैठने के लिए सिंहासन भी नहीं दिया हनुमान को, लेकिन अपने सम्मान में रहे वो। और क्या किया उन्होंने, खुद ने अपना सिंहासन बना लिया, है ना, सबको मालूम तो है कहानी, वो पूंछ इतनी लंबी बना ली, पूंछ के पास बना, ऐसा कर इतना ऊंचा सिंहासन बना लिया जो रावण के सिंहासन से भी ऊंचा हो गया। ऐसे सदैव हमें स्वमान, क्यों स्वमान का अर्थ क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं को ही मान दो, मान माना वो देहाभिमान वाला मान नहीं है, जो बाबा ने हमको स्वमान जीते दिए, बहुत अच्छे अच्छे स्वमान, कल परसों की मुरली थी ना, व्यक्त वाणी कल की वाणी थी, स्वमान से ही सम्मान। आज देवी देवताओं का इतना सम्मान क्यों मिलता है, उनकी मूर्तियों को कितना सम्मान दे रहे हैं, चैतन्य भी कितने स्वमान में रहे होंगे वो, तब तक आज उनकी मूर्ति को, चित्रों को भी कितना सम्मान मिल रहा है। इसलिए हमेशा अपना लक्ष्य सामने रखो, एक लक्ष्य पर मेरी बुद्धि हमेशा रहे, और उस लक्ष्य को सामने रखते हुए हम आगे आगे बढ़ते जाएं, आगे आगे बढ़े, स्वमान में ही हमेशा रहे, तो कभी भी मान अपमान की फीलिंग नहीं आएगी, इसने मेरा अपमान कर दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, ये जो देह का भान कभी आ जाता, अभिमान आ जाता है, ईगो आ जाता है, ये नहीं आएगा। साधु कितना बाबा को गाली देता था रोज, लेकिन बाबा बाबा के मन में कभी उसकी फीलिंग आई बदले के भागे ये कि नहीं, मित्र है वो। जगदीश भाई जी गए थे तो परिचय क्या दिया, पहली बार गए थे तो ब्रज कोठी में बाबा ने, बाबा कैसा, बाबा सब बताते जा रहे थे एक एक बात, बच्चे वहां सामने मेरा एक मित्र रहता है। जगदीश भाई जी, अच्छा मैं बाबा के मित्र से जरूर मिलूंगा, मुझे बाबा के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे सुनने को मिलेगी, ऐसा समझा उन्होंने। बहन से पूछा कि मुझे बाबा के मित्र जो वहां रहता है, मुझे उनसे मिलना है। बहन हंसने लगी, बोले आप क्यों हंस रहे हैं, बोले कि एक साधु है जो दिन भर बाबा को गालियां बोलता है, बाबा ने उसको कहा है। जगदीश भाई अपने अनुभव सुनाते हैं कि मेरे दिल पर इस बात की इतनी छाप पड़ी, जो दिन भर गालियां बोलता है उसको बाबा कहते मेरा मित्र है। उनका अनुभव, जगदीश भाई जी का अनुभव सुना होगा सभी ने। एक तो सड़क जब बन रही थी, मेरे बच्चे आते हैं, गोल गोल ऐसे पत्थर हैं, बच्चों का पैर मुड़ सकता है, मोच आ सकती है, बच्चे गिर सकते हैं, बच्चे आराम से आए, उनको किसी प्रकार की चोट न पहुंचे, तो सड़क बनवा रहे थे, आने का रास्ता तैयार कर रहे थे, उसको थोड़ा सा ठीक कर रहे थे, बस दो चार भाई थे, बाबा थे। जगदीश भाई जी को वहीं जब पहली बार गए तो बाबा उस रूप में मिले, वो पहली छाप मेरे ऊपर, प्रजापिता ब्रह्मा जिसके तन में भगवान आते हैं, थी महान हस्ती, और आज दो चार भाइयों को लेकर सड़क बना रहे हैं, बच्चों के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं, मुझे बच्चों को तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की चोट न पहुंच जाए, कितने निर्अभिमानी, कितने निर्माणता, कितनी शुभ भावना बच्चों के लिए। पहली छाप वो पड़ी, दूसरी गाली देने वाले को भी मित्र कहा। तो ऐसे ही हमारी स्थिति प्रज्ञ रहनी चाहिए, मान अपमान निंदा बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती है, सभी वो कलयुग का समय है, हम इतने अज्ञानी आत्माओं के बीच में रहते हैं, अपने पुरुषार्थ को ऐसा करते हैं, बनाते हैं, इतना ऊंचा लक्ष्य लेके जीवन में चल रहे, तो बातें बहुत आती है, ज्ञानियों की तरफ से भी आती है, अज्ञानियों की तरफ से भी आती है। मान अपमान की बातें, निंदा स्तुति की बातें, लेकिन कभी भी हमारी स्थिति खराब न हो, हमारे मन पर उसका जरा भी प्रभाव न पड़े। जो सचमुच हमने प्रैक्टिकल में अपनी अवस्था ऐसी बना ली, तब आप ये समझ सकेंगे कि मैंने बाप समान बनने का पुरुषा चालू कर दिया है। इसलिए वैसे तो बहुत सारी बाबा को फॉलो करने की बातें हैं, मैं और मेरेपन का त्याग, बाबा ने सब कुछ मेरा खत्म कर दिया था, मेरे संबंधी नहीं, मेरा धन नहीं, मेरा तन नहीं, मेरा मन नहीं, ये सब शिव बाबा का, मन पूरा शिव बाबा का मन मना भव बन गए, तन को भी पूरा ददीची ऋषि माफी पूरे तन को बाबा की सेवा में अर्पित कर दिया। इतनी उम्र में भी रात को बाबा 2 बजे उठ के योग करते थे, इतनी एज में भी कितना कर्मठ, कितना कम समय सोते थे, और जितना तन को सेवा में, यज्ञ सेवा में लगाया, उतना ही देखो और ही कंचन काया बनती गई। और धन तो पता ही है, पूरा धन ही 5 बहनों के नाम के घर अर्पित कर दिया, फिर कभी भी 1 पैसे का हिसाब नहीं पूछा, 1 पैसा भी, 1 रुपया भी अपने नाम से नहीं रखा, पूरा यज्ञ में समर्पित भगवान की सेवा में। तो मैं और मेरे का सब कुछ त्याग, क्योंकि जो भी हमको ये मेरा मेरा दिखाई देता है ना बाहर, ये सब विनाशी है, क्योंकि जो दिखता है ऐसा होता नहीं है। इसलिए देखना हो तो बाहर नहीं देखूं, बाहर जो है वो सब सब सपना है, सब मिटने वाला है, अंदर जो है वो अपना है, अंदर है वो हमारा अपना है, आत्मा को देखूं। सदैव आत्मा को देखो और मन बुद्धि संस्कार, आत्मा में क्या है, मन बुद्धि संस्कार, मुझे ये मन बुद्धि संस्कार वाली आत्मा है, इसको मुझे बाबा जैसा बनाना है, मम्मा बाबा जैसा बनाना है, मम्मा बाबा का जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसे संस्कार बने थे, आत्मा को बाप समान बनाना है, अर्थात मन बुद्धि संस्कार को बनाना है। तो हमेशा जब इस लक्ष्य को लेकर, ये 4-5 पॉइंट ही, 5-6 पॉइंट मैंने बताई आपको, बातें तो बहुत है बाप को फॉलो करने के लिए, तो समय की सीमा को देखते हुए मैंने कुछ कुछ सार की बातें बताई। अगर इतनी ही बातें, क्योंकि बहुत सारी बातें होगी तो उसको ध्यान में रखने में कठिनाई भी होगी और भूल भी जाएंगे, लेकिन यदि कुछ मुख्य मुख्य बातें भी जो बाप समान बनने के लिए है, बाबा के जो जीवन में जो विशेषताएं थी, जिन विशेषताओं ने, जिन बातों ने, जिस पुरुषार्थ ने, जिन धारणाओं ने बाबा को, मम्मा को फरिश्ता बना दिया, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए, उन्हीं बातों को हम अपने जीवन में सदैव धारण करके रखें। और धारण करने के लिए मेरे जीवन में ये धारणा बनी रहे, उस पर बहुत ज्यादा हम अटेंशन और दृढ़ता, ये तो ध्यान रखे कि कहीं भूल तो नहीं रहे हैं, रहती कभी भूल चुका हूं, अनजाने में भूल हो गई, क्या करें, हम तो भूल गए थे उस समय, इसलिए बहुत लगन से और बहुत दृढ़ता से हम अपना स्व का परिवर्तन करेंगे। हम तो ये स्व का परिवर्तन का ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, परिवर्तन की कला, परिवर्तन की कला, परिवर्तन की कला ही मुझे 16 कला संपूर्ण बनाएगी। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के लिए परिवर्तन की कला को याद, मुझे अपने को चेंज करना, सूक्ष्म रूप से अपने को चेक करो क्या क्या सूक्ष्म कमियां मेरे में अभी रह गई है, उन कमियों का मुझे परिवर्तन करना है, कमियों को खत्म करना है। तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य भी यही है, क्या बनने का है, हमारे लक्ष्य की विशेषता क्या है सुनाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण की विशेषता क्या सुना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, यही है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, हम ऐसे बन ही जाएंगे। ओम शांति।